श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 12 भक्ति योग का हम आज श्लोक संख्या 11 का अध्ययन और चर्चा करने जा रहे हैं। कृपया आप दोहराएं। अथैतदप्यशक्तोसि कर्तुं मद्योगमाश्रितः सर्वकर्मफलत्यागं ततः कुरु यतात्मवान्। अनुवाद एवं तात्पर्य द्वारा कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद् एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद जी के द्वारा। किंतु यदि तुम मेरे इस भावनामृत में कर्म करने में असमर्थ हो तो तुम अपने कर्म के समस्त फलों का त्याग को त्याग कर कर्म करने का तथा आत्मस्थित होने का प्रयत्न करो। तात्पर्य, हो सकता है कि कोई व्यक्ति सामाजिक, पारिवारिक या धार्मिक कारणों से या किसी अन्य अवरोधों के कारण कृष्ण भावनामृत के कार्यकलापों के प्रति सहानुभूति तक दिखा पाने में अक्षम रहे। यदि वह अपने को प्रत्यक्ष रूप से इन कार्यकलापों के प्रति जोड़ ले तो हो सकता है कि पारिवारिक सदस्य विरोध करें या अन्य कठिनाइयां उठ खड़ी हों। जिस व्यक्ति के साथ ऐसी समस्याएं लगी हों उसे यह सलाह दी जाती है कि वह अपने कार्यकलापों के संचित फल को किसी शुभ कार्य में लगा दे। ऐसी विधियाँ वैदिक नियमों में वर्णित हैं। ऐसे अनेक यज्ञों तथा पुण्य कार्यों अथवा विशेष कार्यों में के वर्णन हुए हैं जिनमें अपने पिछले कार्यों के फलों को प्रयुक्त किया जा सकता है। इससे मनुष्य धीरे धीरे ज्ञान के स्तर तक उठता है। ऐसा भी पाया गया है कि कृष्ण भावनामृत के कार्यकलापों में रुचि न रखने पर भी जब मनुष्य किसी अस्पताल या किसी सामाजिक संस्था को दान देता है तो वह अपने कार्यकलापों की गाढ़ी कमाई का परित्याग करता है। यहाँ पर इसकी भी संस्तुति की गई है क्योंकि अपने कार्यकलापों के फल के परित्याग के अभ्यास से मनुष्य क्रमशः अपने मन को स्वच्छ बनाता है और उस विमल मना स्थिति में वह कृष्ण भावनामृत को समझने में समर्थ होता है। कृष्ण भावनामृत किसी अन्य अनुभव पर आश्रित नहीं होता क्योंकि कृष्ण भावनामृत स्वयं मन को विमल बनाने वाला है। किंतु यदि कृष्ण भावनामृत को स्वीकार करने में किसी प्रकार का अवरोध हो तो मनुष्य को चाहिए कि अपने कर्मफल का परित्याग करने का प्रयत्न करे। ऐसी दशा में समाज सेवा, समुदाय सेवा, राष्ट्रीय सेवा, देश के लिए उत्सर्ग आदि कार्य स्वीकार किए जा सकते हैं जिससे एक दिन मनुष्य भगवान की शुद्ध भक्ति को प्राप्त हो सके। भगवद गीता में 18:46 श्लोक में कहा गया है, यतः प्रवर्तिर भूतानाम। यदि कोई परम कारण के लिए उत्सर्ग करना चाहे तो भले ही वह यह न जाने कि वह परम कारण कृष्ण है, फिर भी वह क्रमशः यज्ञ विधि से समझ जाएगा कि वह परम कारण श्री कृष्ण ही है। पता नहीं आप लोग सोच रहे होंगे पिछले 2 दिन से आप मुझे ही सुन रहे हैं, मे बी यू फीलिंग बोर, लेकिन हैं, दैट इज योर ग्रेटनेस। लेकिन आदाचरण प्रभु ने आदेश दिया इसलिए मैं एक बार पुनः आपके सम्मुख प्रयास करूंगा भगवद गीता के श्लोक पर कुछ बोलने का। तो कई बार हम पाते हैं हम दूसरों का भला करना चाहते हैं। समाज में कुछ लोग ऐसे हैं जो दूसरों का भला करना चाहते हैं। धीरे धीरे उनकी संख्या बड़ी कम होती जा रही है क्योंकि धीरे धीरे सिद्धांत क्या होता जा रहा है, पर दुख सुखी और पर सुख दुखी। दूसरों का दुख देख के हम सुखी होते हैं और दूसरे का सुख देख के हम दुखी होते हैं। जब दूसरे सुखी होते हैं तो हमें दुख होता है और जब दूसरे दुखी होते हैं तो हर्ष होता है। लेकिन वैष्णव सिद्धांत इसके बिल्कुल विपरीत है। वैष्णव सिद्धांत क्या है, पर दुख दुखी और पर सुख सुखी। दूसरे को दुख को देखकर हम दुखी होते हैं और दूसरे के सुख को देखकर हम सुखी होते हैं। तो समाज में ऐसे अनेक लोग हैं जो दूसरे का भला करना चाहते हैं, कुछ परोपकार करना चाहते हैं। तो यहां पर भगवान भगवद गीता के इस श्लोक में और इससे पहले और आगे के कुछ श्लोकों में बता रहे हैं कि जो हम कार्य कर रहे हैं उसके अलग अलग स्तर हैं। सभी लोग का कार्य एक ही स्तर पर नहीं है और उसके अनुसार हम समझ सकते हैं कि वास्तव में सबसे बड़ी सेवा क्या है। हम दूसरों की मदद करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा कि मदद क्या होती है। यदि हम बिना जाने कि मदद क्या है मदद करने का प्रयास करेंगे तो बहुत संभावना है कि मदद के नाम पर हम नुकसान कर देंगे। जैसे कि प्रभुपाद जी उस विषय में एक कहानी बताया करते हैं, एक्चुअली इंसिडेंट है, रियल इंसिडेंट, रियल लाइफ इंसिडेंट। एक बार उनके पड़ोस में देखे वो एक दो बच्चे थे, दो भाई थे, और एक भाई को टाइफाइड हो गया था और डॉक्टर ने उसको सब मना किया था कि आप कोई भी तली हुई चीज मत खाओ। भाई बच्चा है तो इच्छा तो होती है। तो एक बार माँ घर से बाहर थी तो वो जो भाई बीमार था उसने अपने भाई से कहा कि मुझे माँ बहुत दिन से कुछ पकौड़ा और कुछ परांठा ये सब नहीं दिया है, मेरी बहुत इच्छा है तो कहीं से कुछ ला के दो। तो भाई ने, भाई को लगा हाँ मैं अपने भाई को, मुझे मदद करना चाहिए, इसकी इच्छा है खाने की तो मुझे इसको देना चाहिए, ये मेरी माँ जो है बहुत दिन से दी नहीं है बेचारा, कितना उसके लिए ललायत है, तो आज मैं परोपकार करूँगा। तो उसने वो माँ नहीं दी कहीं से छुपा रखा था, वो सब ला करके पकौड़ा और सब कुछ दे दिया। और उससे क्या हुआ कि उसके भाई की तबीयत और ख़राब हो गई, टाइफाइड था और ख़राब हो गई और एक्चुअली वास्तव में मर गया उसका भाई। तो इससे हम क्या सीखते हैं कि केवल मदद करने की इच्छा होना ही सब कुछ नहीं है। ये जानना ही बहुत जरूरी है कि मदद किस में है, हमारा हित किस में है और सबका हित किस में है। तो भागवतम में एक श्लोक में कहा गया है, नते विदु स्वार्थ गतिम ही विष्णु। हम लोग नहीं जानते हैं कि हमारा हित किस में है, स्वार्थ हमारा किस में, स्वार्थ अर्थात हमारा हित किस में है। और इस अज्ञानता के आधार पर हम ये नारा देते हैं या समाज में नारा प्रचलित है कि मानव सेवा ही माधव सेवा है। मानव सेवा जब वो बोलते हैं तो उसका अभिप्राय सामान्य रूप से जो लिया जाता है कि मनुष्य की शारीरिक मदद करके, शारीरिक रूप से उसकी मदद करके हम भगवान की सेवा कर रहे हैं और भगवान की सेवा इससे अलग कुछ नहीं, इसी में सब कुछ इंक्लूडेड, यही वास्तव में भगवान की सेवा है। इसलिए एक और नारा निकल के आता है, दरिद्र नारायण सेवा, कि नारायण मंदिर में नहीं है, नारायण तो वो जो सड़कों पर भिखारी हैं, जो दरिद्र हैं, जो दुखियारे हैं, वही नारायण है, इसलिए आप उनकी सेवा करो तो वही नारायण की सेवा है, दरिद्र नारायण। तो हमें ये विषय को गहराई में समझना बहुत जरूरी है कि क्या वास्तव में मानव सेवा नारायण सेवा है या मानव की सेवा कैसे, कब नारायण सेवा बनती है, किस तरह से हम वास्तव में किसी की मदद कर सकते हैं, अपने परिवारजनों की, अपने पड़ोसियों की, समाज की, देश की, इस पूरे संसार की और सबसे पहले अपनी, कैसे मदद कर सकते हैं समझना बहुत जरूरी है। तो भगवद गीता के इस अध्याय में भगवान अलग अलग लोगों की चार स्थितियों का वर्णन किए हैं। तो भगवान कहते हैं कि सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति वो है, सबसे उत्तम स्थिति में वो व्यक्ति स्थित है जो अपने वास्तविक हित में स्थित है, वो व्यक्ति ये है। भगवान बताते हैं, मुझ भगवान में अपने चित्त को स्थिर करो और अपनी सारी बुद्धि मुझ में लगाओ, इस प्रकार तुम निस्संदेह मुझ में सदैव वास करोगे। तो जो व्यक्ति इस स्तर पे पहुंचा है कि स्वाभाविक रूप से नेचुरली उसका मन भगवान में स्थिर है, भगवान की सेवा में स्थिर है, भगवान श्री कृष्ण के साथ जो हमारा संबंध है, जो उस संबंध में स्थित हो चुका है, जिसे हम स्वरूप सिद्धि स्थिति कहते हैं, अपने स्वरूप में स्थित होना, जीवेर स्वरूप हुआ नित्य कृष्णदास, इस स्वरूप को जो प्राप्त किए उसे स्वरूप सिद्ध विस्था कहते हैं। जिस स्थिति को प्राप्त करने पर हम अनायास स्वाभाविक रूप से भगवान की सेवा करना चाहते हैं, अनायास स्वाभाविक रूप से हमेशा भगवान का चिंतन रहता है, हमारी सब इंद्रियां स्वाभाविक रूप से भगवान की सेवा करती हैं, स्ट्रगल नहीं, प्रयास नहीं, स्वाभाविक, ऑटोमेटिक। तो भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं यह स्थिति सर्वश्रेष्ठ स्थिति है, क्योंकि जो व्यक्ति इस स्थिति में है वो हमेशा ही लिव्स इन मी, वो हमेशा मेरे साथ रहता है। यहा यस्य हरिदास्य कायन मनसा गिरा निखिल स्वप्यवस्थासु मुक्त संगत से जायते। जो व्यक्ति इस प्रकार की स्थिति में स्थित है अपने मन वचन और शरीर से पूरी तरह से भगवान की सेवा में नियोजित है, वो इसी भौतिक जगत में रहते हुए भी वास्तव में भगवत धाम में रह रहा है, क्योंकि वो अपनी स्वरूप सिद्धि की अवस्था में है। तो हर व्यक्ति की ये सर्वोत्कृष्ट स्थिति है, इसलिए हमारा हित है इस स्थिति को प्राप्त करना, और यदि हम किसी दूसरे का हित चाहते हैं वास्तव में तो उसका हित है उसे इस स्थिति की तरफ लाने के लिए प्रेरित करना, प्रयास करना, ट्रेन करना। यह है माधव की इच्छा, यहां खुद साक्षात माधव कह रहे हैं। तो अगर माधव सेवा करनी है तो हमें माधव के आदेश का पालन करना होगा कि नहीं करना होगा? अगर आपके घर में कोई अतिथि आता है, आप उसकी सेवा करना चाहते हैं, तो बुद्धिमानता किस चीज में है कि आप पहले अतिथि से पूछिए कि आपको क्या चाहिए, मैं आपकी सेवा कैसे करूं? ऐसा नहीं कि उसे चाहिए तो दूध और आप ला के दें उसको चाय, मेरी चाय की आप चाय पिए, कई बार होता है ना घर जाते हैं, हमारी प्रसन्नता के लिए आप ये स्वीकार करें, अरे भाई लेकिन मेरे को नहीं चाहिए, नहीं हमारी प्रसन्नता, तो एक्चुअली वो सेवा भावना नहीं हुई। सेवा भावना मतलब जो अतिथि को चाहिए उसे वो दें, ना कि जो आपको चाहिए वो दें। तो उसी प्रकार से मानव सेवा माधव सेवा नहीं है कि हम अपने विचार से जो करें उसको फिर थोप दें कि यही माधव की सेवा, माधव की सेवा है। माधव सेवा तभी माधव सेवा होगी जब जो माधव कह रहे हैं वो सुनेंगे। लेकिन ये नास्तिकवाद के अंतर्गत माधव तो है ही नहीं वास्तव में, वो तो नाम के लिए माधव है। तो इसलिए कभी भगवद गीता को सुनने की तो रुचि भी नहीं है, उनको इच्छा नहीं है जानने की कि माधव क्या कह रहे हैं। लेकिन यहां हम माधव से सुन रहे हैं कि माधव चाहते हैं, क्या चाहते हैं माधव हम सबसे, इस भौतिक जगत में जितने भी जीव हैं उनसे वो क्या चाहते हैं? वो चाहते हैं कि हम सब इस दूषित भौतिक जगत जो जेल है जीव के लिए, उस जेल से निकलकर हम अपनी स्वाभाविक स्थिति को प्राप्त करें, भगवत धाम को प्राप्त करें, भगवान के सानिध्य में रहें नित्य रूप से, जो हमारी स्वाभाविक स्थिति और इसलिए सुखद स्थिति है। जैसे प्रभुवाधान देते थे, मछली, मछली का स्वाभाविक स्थान है जल, अगर वो जल में है संतुष्ट, और अगर जल से बाहर है तो आप कुछ भी और कर लीजिए जल देने के अलावा, वो तड़पेगी। तो वास्तव में हमारी स्थिति ऐसी तड़पने की स्थिति है। लेकिन एक प्रश्न उठाया सकता है कि लगता तो नहीं हम तड़प रहे हैं, लगता तो हम कि हम सुखी हैं, मजा कर रहे हैं, तो कैसे संभव है कि हम मछली की तरह पानी से बाहर हैं लेकिन फिर भी लगता है कि सुखी है? तो क्या होता है जब ऑपरेशन करना होता है, तो ऑपरेशन मतलब चीरा करना है यानी काटना है, तो सोच सकते हैं बड़ा दुख की स्थिति होगी। इसलिए डॉक्टर क्या करता है ऑपरेशन करने से पहले, एनेस्थीसिया देता है। तो माया के द्वारा हम सबको एनेस्थीसिया दिया हुआ है, जिसकी वजह से हम लोग दुखी होने पर भी उस दुख का एहसास नहीं करते हैं। और एक्चुअली एनेस्थेटिक ड्रग्स ऐसी भी हो सकती हैं जिससे एक प्रकार का यूफोरिया डेवलप हो। यूफोरिया मतलब एक प्रकार की ऐसी मानसिक स्थिति जिसमें आपको लगे कि आप आकाश में उड़ रहे हैं और बहुत ही सुखद स्थिति में हैं, ऐसे भी संभव है। ऐसी ड्रग्स हैं यूफोरिक ड्रग्स जिनसे ऐसा अनुभूति होती है, एज इफ यू आर फ्लाइंग एंड यू आर। तो न केवल एनेस्थीसिया दिया हुआ है बल्कि ऐसा एनेस्थीसिया दिया हुआ जिसमें हमको लगता है कि वी आर वेरी हैप्पी, बहुत मजे में है हम लोग, वी आर हैप्पी, केम शो, बहुत सारुष है, मजा मच, बहुत अच्छे हैं हम लोग। लेकिन यहां भगवान के द्वारा हमें जानने को मिलता है कि वास्तव में हम सबकी स्थिति बहुत दुख में है। क्या दुख में है? कि अनेक अनेक कष्ट है, और सबसे बड़े महान कष्ट है जन्म मृत्यु जरा व्याधि। तो आप कितने भी सुखी रहने की प्लानिंग कर रहे हैं, लेकिन सामने तो ये चार समस्याएं हैं जो आपकी सब प्लानिंग को फेल करने वाले हैं। कोई चांस नहीं है आपके आगे। आप कुछ भी प्लान कर लीजिए, लेकिन आपकी वो प्लानिंग फेल होगी, बिकॉज यू हैव टू डाई वन डे और फिर कई जन्म होगा, और फिर जो भी आपने इस जीवन में किया वो सब व्यर्थ हो जाएगा, फिर दोबारा से आप स्टार्ट करेंगे उसको ABCD से। और जरूरी नहीं है मनुष्य जीवन में, जहां संभावना है, यदि हम कृष्ण भावनामृत का अनुशील नहीं करेंगे, जहां संभावनाएं हैं पशु जीवन प्राप्त करेंगे। क्यों? क्योंकि मनुष्य जीवन एक चांस है परम सत्य को समझने का, भगवान को समझने का। यदि मनुष्य जीवन पाकर के भी कोई व्यक्ति भगवान को समझने की जगह इस भौतिक जगत का भोग करने में ही जीवन व्यतीत करता है, तो ये चांस उसको दोबारा फिर उसे छीन लिया जाता है कि आप कुछ जीवन तो दिया आत्म साक्षात्कार के लिए, लेकिन आपने जीवन जिया जानवर की तरह, अर्थात केवल इंद्रिय भोग के लिए। तो फिर क्यों ना आपको जानवर का जीवन दिया जाए, जानवर का शरीर दिया जाए, मनुष्य जीवन का आपने दुरुपयोग किया। तो प्रकृति के नियम के अनुसार उस व्यक्ति को जो आत्म साक्षात्कार के लिए प्रयासरत नहीं है, जो इस भौतिक जगत के सुखों में ही लिप्त रहता है पूरे जीवन भर, जो इससे ऊपर नहीं उठना चाहता है, उसे पुनः पशु योनि प्राप्त होगी। तो इसलिए भगवान यहां पर बता रहे हैं कि सर्वश्रेष्ठ स्थिति है कि हम इस भौतिक जगत से निकलने के लिए प्रयास करें, और उसकी स्थिति हाईएस्ट लेवल है कि हम स्वरूप सिद्धि स्थिति को प्राप्त करें। लेकिन फिर भगवान कह रहे हैं कि यदि जो लोग इस स्थिति पर नहीं है, हम सब लोग इस स्थिति में है कि भगवान के प्रति प्रेम हमारे हृदय में नहीं है, इसलिए हम हमेशा भगवान का चिंतन नहीं कर सकते, अपनी सभी इंद्रियों को भगवान की सेवा में हर समय नहीं लगा सकते, तो फिर क्या करें? तो भगवान उसका उत्तर देते हैं, हे अर्जुन, हे धनंजय, यदि तुम अपने चित्त को अविचल भाव से मुझ पर स्थित नहीं कर सकते, तो तुम भक्ति योग के विधि विधानों का पालन करो, इस प्रकार तुम मुझे प्राप्त करने की चाह उत्पन्न करो। ये दूसरा स्तर है जो भगवान बता रहे हैं कि मान लिया, समझ में आया कि ठीक है आपकी वो स्थिति नहीं है कि हमेशा भगवान चिंतन कर पा रहे हैं, तो क्या करो? भक्ति योग के विधि विधानों के द्वारा भगवान को का प्रेम प्राप्त करने के लिए प्रयास करो। तो वो है वैदिक भक्ति, विधि विधानों के अनुसार की जाने वाली भक्ति। क्या हमें रुचि नहीं है कि हम सोलह माला नहीं भगवान का नाम लें, लेकिन एक नियम हम अपने आप स्वीकार करते हैं समझ करके कि ये नियम के द्वारा मैं भगवत प्रेम प्राप्त करूंगा, इसलिए मैं अपनी इच्छा से नियम लेता हूं कि मैं हर दिन कम से कम 16 माला भगवान का नाम जप करूंगा। ये वैदिक भक्ति का एक अंग है। मैं हर दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त से पहले उठूंगा, इच्छा नहीं है, स्वाभाविक रूप से इच्छा नहीं है, नींद आती है, स्ट्रगल करना पड़ता है, लेकिन क्योंकि हम समझे हैं कि ये मेरे लिए जरूरी है भगवत प्रेम प्राप्त करने के लिए, इसलिए हम स्वाभाविक अपने आप स्वीकार करते हैं इस विधानों को पालन करने का। तो ये भक्ति का दूसरा नियम है, जिसके अंतर्गत एक भक्त पूरा जीवन को समर्पित करता है वैदिक भक्ति करने के लिए, उसका पूरा जीवन समर्पित होता है। तो इसका अर्थ है, ये द्वितीय स्तर हमें दिखाता है पूर्ण रूप से भक्ति योग के लिए समर्पित जीवन, जिसमें पूरा दिनचर्या, पूरा जीवन सुबह से लेकर रात तक हमारा कार्य है भगवान की अलग अलग प्रकार की सेवाओं में नियोजित होना। मंगला आरती, जैसे प्रभुपाद जी ने सिस्टम जो बनाया है, मंगला आरती से प्रारंभ होकर के फिर जप करना, कीर्तन, और फिर प्रचार इत्यादि के कार्य की अलग अलग सेवाएं लेना, ये सब सेकंड लेवल है। लेकिन अभी हम सबके सामने स्थिति है कि जरूरी नहीं है कि सब लोग फुल टाइम पूरा अपना समय भक्ति योग के अनुशीलन में लगा पाए। क्यों? क्योंकि हम उसके लिए हम तैयार नहीं है, और सामाजिक स्थिति के द्वारा और मानसिक स्थिति की वजह से हम पूरी तरह से इस भक्तियों का अनुशीलन 24 आवर्स करने में असमर्थ हैं। तो उनके लिए भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, यदि तुम भक्तियों के विधि विधानों का भी अभ्यास नहीं कर सकते, तो तुम मेरे लिए कर्म करने का प्रयास करो, क्योंकि मेरे लिए कर्म करने से तुम पूर्ण अवस्था को प्राप्त करोगे। ये थर्ड लेवल है, जिसमें हम बताते हैं कि आप ठीक है, आप 24 घंटे यदि जो विधि विधान है उनका पालन नहीं कर सकते भक्ति योग के, तो आप क्या कीजिए? तो आपकी अभी आसक्ति है या जो भी कारण है, इस भौतिक जगत में भी आप अनेक कार्यों के में आसक्त हैं, तो आप वो कार्य करने में आसक्त हैं, लेकिन आप उस कार्य के फलों को मुझे समर्पित करें। आपकी अभी इस प्रकार की स्थिति नहीं है कि मैं कार्य केवल भक्ति सेवा के ही कार्य करूंगा, विधि विधान भक्ति के विधि विधान ही करूंगा, उसके लिए आप तैयार नहीं है, नहीं भाई मुझे भौतिक कार्य भी करने होंगे, तो ठीक है थर्ड लेवल है, आप उन कार्यों कीजिए लेकिन कार्य के फलों को खुद मत भोग कीजिए, उन कार्य के फलों को आप भगवान की सेवा लगाइए। तो हम में से कई भक्त लोग इस स्तर पर कार्य कर रहे हैं कि हम अपने कार्य कर रहे हैं लेकिन अभी हम समझते हैं कि उन कार्य के फलों का भोग हम खुद नहीं करेंगे, हम उनका भगवान को समर्पित करेंगे। तो प्रभुपाद इस संदर्भ में तात्पर्य में लिखते हैं कि एक बिजनेसमैन है, वो बिजनेस कर रहा है लेकिन वो समझे कि ये बिजनेस के प्रोप्राइटर भगवान श्री कृष्ण है, इसलिए ये जो भी संपत्ति जो मैं अर्जित कर रहा हूं वो वास्तव में भगवान की संपत्ति है और उसका उपयोग भगवान की सेवा के लिए। और प्रभुपाद लिख रहे हैं यदि हम शत प्रतिशत उसको भगवान की सेवा में ना लगा पाए, आदर्श तो है कि शत प्रतिशत भगवान की सेवा में लगाएं और केवल प्रसाद रूप में जितना हमारे आधारभूत आवश्यकताओं के लिए परिवार के लिए आवश्यक है उतना उपभोग करें। हाँ लेकिन यदि हम इतना निष्काम नहीं हो पाए हैं तो फिर हम कम से कम कुछ प्रतिशत भगवान की सेवा में अर्पित करें, ये तीसरा स्तर है। फिर प्रभुपाद जी आज के श्लोक में जो हमने पढ़ा उसमें चौथे स्तर की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं किंतु यदि तुम मेरे इस भावनामृत में कर्म करने में असमर्थ हो तो तुम अपने कर्म के समस्त फलों का को त्याग कर कर्म करने का तथा आत्मस्थित होने का प्रयत्न करो। कि कृष्ण भगवान है इसमें भी आपकी अभी विश्वास नहीं बैठ रहा है कि भगवान को समर्पित करना चाहिए, आप भगवान अपने कार्यों को भगवान को कब समर्पित करेंगे, जब आपको विश्वास है कि श्री कृष्ण भगवान है तभी करेंगे ना, नहीं तो कैसे करेंगे। हाँ मुझे ये पता है कि कोई ना कोई है शक्ति, कोई ना कोई है, पर वो कौन है ये नहीं पता, इसमें विश्वास नहीं कि कृष्ण, लेकिन है कोई ना कोई शक्ति और वो शक्ति सब जगह है, सब में विद्यमान है, सर्वव्यापी है, हर जन जन में हर व्यक्ति के अंदर है। इसीलिए उस स्तर के लोग के लिए संस्तुति की गई है कि वे लोग अपने कर्मों वो कर्मों के प्रति आसक्त हैं और भगवान कौन है उनको ये ज्ञान नहीं है, शुद्ध ज्ञान नहीं है, स्पष्ट नहीं है, तो इसलिए वो अपने कर्मों के फलों को खुद भोगना करके दूसरों को अर्पित करें। इसके अंतर्गत आता है अस्पताल खुलवाना, अनाथ आश्रम खुलवाना, जो भी समाज सेवा जो हम आज बहुप्रचलित है वो सब समाज सेवा इस स्तर में आती है कि भगवान तो सबके अंदर है तो अगर हम सबकी सेवा करेंगे तो इनडायरेक्टली भगवान की सेवा हो रही है, तो इस स्तर पे आती है हमारी सामाजिक सेवा। लेकिन इस स्तर का और पहले के वर्णित तीन स्तरों में एक बहुत महत्वपूर्ण अंतर है। जो पहले के तीन स्तर बताए गए उसमें भगवान हर स्टेप पर बता रहे हैं यदि आप पहला नहीं कर सकते दूसरा करो और दूसरा करोगे तो अपने आप पहले भी पहुंच जाओगे, अगर दूसरा नहीं कर सकते तो तीसरा करो और तीसरा करने से अपने आप दूसरे पे और पहले पहुंच जाओ, यानी कि वो एक चेन है, एक के बाद दूसरा और पहला। लेकिन ये जो श्लोक है इसमें भगवान नहीं कह रहे हैं कि यदि आप ऐसा करोगे तो अपने आप फर्स्ट लेवल पहुंच जाओगे, अर्थात समाज सेवा करने मात्र से हम भगवत भक्त नहीं बनते, समाज सेवा करने से हमें ज्ञान प्राप्त होता है, जब हम अपने कर्म का निष्काम हम अपने कर्म के फलों के प्रति निष्काम बनते हैं उसका भोग अपने इंद्रिय भोग के नहीं करते हैं तो उससे ज्ञान आता है कि मैं शरीर हूं मैं आत्मा हूं, ये ज्ञान आता है। इसलिए भगवान चौथे अध्याय बताए हैं कर्म अखिलम ज्ञाने परि समाप्यते, सभी जो यज्ञ हैं सैक्रिफाइसेस हैं इसका परिणाम होता है कि हम ज्ञान में स्थित होते हैं, तो जब हम निष्काम भाव से कोई कार्य करते हैं उसके फलों को खुद भोग ना करके त्याग करते हैं उसका परिणाम होता है ज्ञान का अर्जन, अहम ब्रह्मास्मि, ये ज्ञान हमको प्राप्त होता है कि भाई मैं शरीर नहीं हूं मैं आत्मा हूं, ये कुछ और चीज है, ये सब कुछ भौतिक नहीं है, इससे अलग कुछ है, ये ज्ञान धीरे धीरे हमको मिलता है। तो वो ज्ञान हमको मिलेगा और इस प्रकार से हम धीरे धीरे हमारा प्रगति होगा कि हम कर्म योगी से हम ज्ञान योगी बनेंगे, पहले कर्म कांडीय से कर्म योग और कर्म योग से ज्ञान योग, इस प्रकार से हमारी प्रगति होगी। लेकिन भक्त हम तब बनेंगे, भगवत प्रेम तब प्राप्त करेंगे जब भक्त का संग होगा, उसका वही उपाय है एकमात्र, जब भक्तों के मुख से हम सुन करके हम हमारी श्रद्धा डेवलप होगी कि यस वो जो सुप्रीम है वो कौन है, जब हम इसमें विश्वस्त होंगे तब हम भक्ति का हमारा एंट्री होगा, हम एंटर करेंगे और फिर वो जो पहले के तीन स्तर बताए हैं उसमें हम आएंगे। अर्थात परम सत्य तक पहुंचने के लिए दो पैरेलल तरीके हैं, जिसको प्रभुपाद बताए हैं भगवद गीता में के श्लोकों के माध्यम से समझा रहे हैं। एक है इनडायरेक्ट और एक है डायरेक्ट। तो प्रभुपाद इसकी उपमा देते हैं, एक है लिफ्ट और एक है स्टेयरकेस, सीढ़ियां। तो स्टेयरकेस है कि वो व्यक्ति जिनको ये पता नहीं है कि परम सत्य क्या है, लेकिन अभी वो परम सत्य है को जानने के लिए इच्छुक हैं, लेकिन पता नहीं है कौन है, इच्छुक हैं और ये समझते हैं कि कोई ना कोई इस जड़ पदार्थ से इन सबसे ऊपर कोई ना कोई है, तो वो लोग कहलाए जाते हैं योगी। हर वो व्यक्ति जिसका जीवन का उद्देश्य इस भौतिक जगत में भोग करना नहीं है, जिसका उद्देश्य परम सत्य को जानना है, उसके साथ अपने संबंध को स्थापित करना है, उसे योगी कहा जाता है। नाउ ही इज इन योगा, वो योग में एंटर हो गया है। अभी उस व्यक्ति का जो पहला स्तर है वो है कर्मयोगी, अर्थात वो अपने कर्म करता है वर्णाश्रम नियम के अनुसार, अपने कर्म करता है और उसके जो फल हैं उसको खुद भोग ना करके या कुछ परसेंटेज उसकी वो अन्यों को देता है, यानी कि वो समाज सेवा करता है। तो ये जो हमारा सीढ़ी है योग की, उसमें जो पहला सोपान है वो ये कर्म योग है, जिसके अंतर्गत रह करके लोग समाज सेवा करते हैं, वो ये इनडायरेक्ट प्रोसेस का पहला हिस्सा है। ऐसा करने का परिणाम होता है कि धीरे धीरे उसके अंदर ज्ञान अर्जित होता है, ज्ञान आता है कि मैं ही शरीर नहीं हूं, मैं इससे ऊपर हूं, मैं आत्मा हूं, और इसके इस ज्ञान में वो प्रगति करता है, अहम ब्रह्मास्मि और परम सत्य जो है वो निराकार ब्रह्म है, इस ज्ञान में वो स्थित होता है कि परम सत्य जो है वो ब्रह्म है, निर्विशेष निराकार ब्रह्म वो है परम सत्य। इस प्रकार की जो स्तर है उस योगी को कहते हैं ज्ञान योगी। अभी वो कर्म योगी से बन गया ज्ञान योगी, उसका प्रमोशन हुआ ज्ञान योगी में। फिर ज्ञान योगी धीरे धीरे अपने ज्ञान में आगे वृद्धि करके धीरे धीरे परम वो जो ब्रह्म है उसके ऊपर ध्यान करना प्रारंभ करता है, और फिर अगर उसमें सिद्धि प्राप्त करता है तो ब्रह्म में लीन हो सकता है, या तो वो परमात्मा के ऊपर ध्यान करता है जो हृदय के अंदर चतुर्भुज भगवान विष्णु है, और इस प्रकार से परमात्मा के स्तर तक पहुंचता है, परमात्मा को दर्शन करता है अपने हृदय में। तो और इस प्रकार से बहुनाम जन्मनाम अंते, अनेक अनेक जन्मों के बाद ज्ञानवान मान प्रपद्यते, अनेक अनेक जन्मों के बाद जब उसको भक्तों के साथ संग होता है, वो तैयार होता है भक्तों के साथ सुनने के लिए, समझने के लिए, अनेक अनेक जन्मों के बाद तब वो अंत में भक्त बनता है। बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यत, अभी वो मेरी शरण में आता है, अभी समझता है कि वो जो परम सत्य जिसकी मैं तलाश में था अब समय में आया कि वो परम सत्य श्री कृष्ण है। बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते, वो भी मेरी शरण में आता है। वासुदेवम सर्वमिति, कि वासुदेव ही सब कुछ है, जिसकी मैं तलाश कर रहा था, ही इज दैट वासुदेव। सब महात्मा सुदुर्लभ, लेकिन ऐसा महात्मा बहुत दुर्लभ है, बहुत मुश्किल है जो इस प्रकार से ज्ञान योगी और इस प्रकार करके आता है, वेरी रेयर विकेट। तो ये है स्टेप बाय स्टेप तरीका। अभी दूसरा है लिफ्ट। लिफ्ट किन लोगों के लिए है? बुद्धिमान लोगों के लिए है लिफ्ट, करेक्ट। स्टेयर पर चढ़ने का झंझट क्यों करें अगर लिफ्ट है तो। यानी बुद्धिमानता क्या है कि बुद्धिमानता है कि व्यक्ति जब ये समझ लेता है, ये जानता है कि परम सत्य श्री कृष्ण है, वो बुद्धिमान है, वो उसका बुद्धिमत्ता का लक्षण है। जो बुद्धिमत्ता अनेक अनेक जन्मों में शायद अनेक अनेक पुण्य कर्म करने के द्वारा ये प्राप्त हुआ है, या किसी भक्त के संग में आने से अपनी स्वतंत्र इच्छा शक्ति का उपयोग करके उस भक्त से सुनकर उसके अंदर वो श्रद्धा जागृत हुई है, समझ जागृत हुई है कि कृष्ण भगवान है। उस व्यक्ति के लिए नहीं है ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। उस व्यक्ति के लिए भगवान संस्तुति किए हैं लिफ्ट, डायरेक्ट प्रोसेस, यानी कि भक्ति योग। उस भक्ति योग के हैं ये तीन स्तर जो हमने पहले डिस्कस किए। सबसे निम्न स्तर है कि हम पूरी तरह से अपने जीवन को भगवान की सेवा में तुरंत समर्पित करने में असमर्थ हैं, हमें आसक्तियां हैं इस भौतिक जगत में और भौतिक जगत में कर्म करने में आसक्ति हैं, इसलिए हम प्रारंभ करते हैं कि हम कर्म करेंगे लेकिन फलों का कुछ अंश भगवान की सेवा में लगाएंगे, भगवान श्री कृष्ण की सेवा में, कुछ प्रचार कार्य में लगाएंगे, इत्यादि इत्यादि, और फिर आगे बढ़ेंगे और अधिक पूरी तरह से जो भी हमारे कर्म का फल है उसे भगवान की सेवा में लगाएंगे, और फिर धीरे धीरे और आगे प्रगति होगी, तो अभी हम अपने जीवन को पूरी तरह से ढालेंगे भगवान की इस वैधि भक्ति के योग में, और उस प्रकार से आगे चलते चलते एक दिन शुद्ध भक्त बनेंगे। पूरी तरह से हमारा जब चित्त भगवान की सेवा में, कायन शरीर मन और वचन पूरी तरह से स्वाभाविक रूप में भगवान की सेवा में रत होंगे। तो इस प्रकार से लिफ्ट है और वो इनडायरेक्ट प्रोसेस है। तो हर उस व्यक्ति जो तैयार है समझने के लिए कि कौन है भगवान, कैसे श्री कृष्ण भगवान है, उसे प्रेरित करना चाहिए लिफ्ट लेने के लिए, ना कि उसे प्रेरित करना चाहिए इनडायरेक्ट प्रोसेस के लिए। तो ये जो हम समाज सेवा कर रहे हैं इसकी संस्तुति भगवान करते हैं उन लोगों के लिए जो श्री कृष्ण भगवान हैं और भक्ति के लिए तैयार नहीं है उनके लिए। तो इसीलिए जो समाज सेवा हम कर रहे हैं ये वास्तव में जीव को स्वतः अपने आप भगवत भक्त नहीं बना सकता, और जब तक व्यक्ति भगवत भक्त नहीं बने तो वास्तव में उसका परम कल्याण तब तक नहीं होता है। क्यों? क्योंकि हम जैसे हम गरीबों को खाना देते हैं, अनाथ आश्रम खुलवाते हैं, लेकिन क्योंकि ये सब मदद सीमित है शरीर से, इसलिए वो मदद मैक्सिमम तब तक रहेगी जब तक वो उसका शरीर है, मैक्सिमम जब तक शरीर, तब तक शरीर खत्म होने पर खत्म बेकार। और ये समाज सेवा जो वर्तमान समय विशेष रूप से हो रही है उसके अंदर और भी अनेक त्रुटियां हैं। अगर हम ये सोच रहे हैं कि वास्तव में हम शारीरिक दृष्टि से अपने प्रयास से किसी की मदद कर सकते हैं तो वो अपने आप में एक भ्रम है वास्तव में। क्यों? क्योंकि हम ये नहीं समझ रहे हैं कि किसी व्यक्ति के भौतिक दुख को प्राप्त करने का मूल कारण क्या है। अगर डॉक्टर को बीमारी का इलाज करना है तो पहले उसे बीमारी की जड़ को समझना पड़ेगा ना, बीमारी के कारण को समझना पड़ेगा। अगर बीमारी के कारण को नहीं समझा और इलाज कर रहा है तो परिणाम अंततः होगा बीमारी ठीक नहीं होगी, बार बार आएगी, सिम्टोमेटिक रिलीफ। दर्द है, सिर दर्द है, ठीक है सिर दर्द की दवा ले लो, लेकिन सिर दर्द है क्योंकि अंदर कैंसर है, ट्यूमर है, तो जब तक ट्यूमर को नहीं निकाला जाएगा तब तक बार बार सिर दर्द होगा। तो उसी प्रकार से समाज सेवा का आधार है कि हम ये जानने का प्रयास नहीं कर रहे हैं, इस अज्ञानता में है कि कोई व्यक्ति को कोई भौतिक दुख क्यों है, कोई व्यक्ति गरीब क्यों है, कोई व्यक्ति किसी भी भौतिक परिस्थिति में क्यों है, तो क्यों है, क्या कारण है उसका। हमारे शास्त्र इसका मार्गदर्शन देते हैं, अन्यथा क्या एक्सप्लेनेशन है कि ये समाज के अंदर सबकी अलग अलग स्थिति क्यों है। किसी आदमी का जन्म ही अंबानी परिवार में हो रहा है और किसी आदमी का जन्म ही अनाथ आश्रम में हो रहा है जहां पता ही नहीं कि उसके माँ बाप कौन है। अभी दोनों के स्टेटस ऑफ लिविंग में क्या सिमिलैरिटीज हो सकती है। तो क्यों जन्म से ही सब अलग अलग क्यों है, ये अलग अलग वैरायटीज क्यों है, इसका क्या, इसका एक्सप्लेनेशन क्या हो सकता है, क्या एक्सप्लेनेशन, क्यों अलग अलग स्थितियां हैं, कोई अमीर गरीब, कोई दुखी, कोई शरीर दृष्टि से बहुत अच्छा है, कोई बहुत कमजोर है, कोई कुत्ता बिल्ली है तो कोई मनुष्य है, ये सब अलग अलग डिफरेंसेस क्यों है। तो हमारे शास्त्रों में इसका एक्सप्लेनेशन हमको मिलता है कि हम अपने कर्मों के अनुसार जो जन्म जन्मांतर चल रहे हैं उसके अनुसार हमें एक प्रकार की भौतिक स्थिति मिलती है, हमारे कर्म फल के अनुसार हमें एक प्रकार की भौतिक स्थिति, और उस भौतिक स्थिति में रहते हुए हम जिस प्रकार का कर्म कर रहे हैं उससे हम अपनी आगे की भौतिक स्थिति को निर्धारित कर रहे हैं। इस प्रकार से ये एक कर्म चक्र है जिसमें हम फंसे हुए हैं, चल रहे हैं, एक प्रकार का फल भुगत रहे हैं और इस समय जो कार्य कर रहे हैं उससे एक प्रकार का फल निर्मित कर रहे हैं जो आगे आने वाले समय में भुगतेंगे। तो इसीलिए क्या हम प्रकृति के इन सिद्धांतों के विरुद्ध जाकर के किसी की मदद कर सकते हैं। उस व्यक्ति के कर्म के अनुसार तो लिखा है कि उसको इस प्रकार से कष्टमय जीवन में जीना है, और आप सोच रहे हैं मैं बहुत बहादुर हूं, मैं बहुत शक्तिशाली हूं, बहुत पैसे वाला हूं और मैं अपनी शक्ति से उसके कर्मों के इस निर्धारित फल को हटा दूंगा। अर्थात हम सोच रहे हैं कि हम भगवान से ऊपर हैं, प्रकृति के नियमों से हम ऊपर हैं, और वास्तव में देखें तो संभव नहीं हो पाता है। हम केवल अपने हृदय को सांत्वना दे सकते हैं कि मैंने किसी की मदद की, लेकिन क्या वास्तव में आप किसी के दुखों को दूर कर पाते हैं। आप एक प्रकार से दुख को दूर करना चाहते हैं तो और अनेक प्रकार से दुख आते हैं। आप सोच रहे हैं कि अगर हम इलाज करेंगे, दर्दियों का इलाज करेंगे तो बहुत बड़ी सेवा होगी, लेकिन क्या आप दर्दी का इलाज करके ये गारंटी दे सकते हैं कि वो व्यक्ति सुखी हो जाएगा। अगर कोई व्यक्ति, तो इस समाज में हम देखते हैं बहुत से लोग हैं जिनको कोई बीमारी नहीं है, स्वस्थ हैं, तो क्या हर स्वस्थ व्यक्ति सुखी है? क्या हर स्वस्थ व्यक्ति सुखी है? नहीं, स्वस्थ है लेकिन लड़का जो है सुनता नहीं है, भाग गया है, या लड़की घर से भाग गई है, या पत्नी भाग गई है, या कुछ बहुत सारे कारण हो सकते हैं। स्वस्थ है लेकिन बहुत सारे कारण है, तो आप क्या करेंगे उसमें? आप एक तरीके से प्रयास करेंगे, प्रकृति के पास बहुत सारे तरीके हैं कर्म के फलों को लाने के। और वास्तव में जो हमारा ट्रीटमेंट है, मेडिकल ट्रीटमेंट है, क्या वो अंतिम रूप में कारण है किसी को बचाने का? क्या कोई भी व्यक्ति बचता है डॉक्टर और दवाई से? तो लगता तो है हाँ, इलाज होता है और पेशेंट ठीक होता है। तो अगर अंतिम रूप में डॉक्टर और दवाई ही कारण है किसी भी व्यक्ति के इलाज का, ट्रीट उसके ठीक होने का, तो फिर हर केस में ऐसा क्यों नहीं होता है? हर समय वही डॉक्टर, वही दवाई उसी प्रकार के पेशेंट को, जिसकी बीमारी वैसी ही है, देता है, लेकिन फिर भी रिजल्ट अलग अलग होता है। कॉमन एक्सपीरियंस है, अगर आप डॉक्टर हैं तो आप प्रिडिक्ट करते हैं कि दो पेशेंट हैं, ओके, डॉक्टर भी हैं। एक बार एक इंसिडेंट मैंने अपने आप देखा कि हमारे हॉस्पिटल में दो पेशेंट, तो एक की स्थिति मेडिकल साइंस की दृष्टि से बहुत अच्छी थी, तो उसको हमने डिक्लेयर किया ये तो बच जाएगा, ये ट्रीटमेंट से बच जाएगा, ये गंभीर है, इसके बचने की उम्मीद बहुत कम है। नाइट रात हुई और सुबह हुआ ट्रीटमेंट, ऑपरेशन जो भी हुआ, उसके बाद में परिणाम बिल्कुल उल्टे, जो बचने की उम्मीद थी ही डाइड, और जिसके बचने की उम्मीद नहीं थी ही एस्केप्ड। ये हम साक्षात देख सकते हैं। तो यदि डॉक्टर और दवाई ही अंतिम कारण है, इफ इट इज द अल्टीमेट कॉज, अल्टीमेट डिसाइडिंग फैक्टर, तो फिर हर केस में ऐसा क्यों नहीं होता? डॉक्टर भी गारंटी नहीं दे सकते, जब सब कुछ मिलता है बोलते हैं अभी आप भगवान की अब प्रार्थना करो, इसके अलावा और कुछ नहीं किया सकता। यानी कि अगर कोई सेन आदमी होगा तो समझेगा कि डॉक्टर अंतिम में मैं नहीं हूं सब कुछ कंट्रोल करने वाला, मेरे से ऊपर कोई और है, उसकी सैंक्शन होती है तो मेरी दवाई काम कर पाती है, सैंक्शन नहीं तो नहीं होती। हम अंतिम कारण नहीं है, इसीलिए भागवत में बहुत सुंदर श्लोक है कि जिस प्रकार से मां बाप अपने बच्चे को बचाने की गारंटी नहीं दे सकते, जिस प्रकार एक डॉक्टर और दवाई किसी पेशेंट को बचाने की गारंटी नहीं दे सकते, जिस प्रकार से एक डूबते हुए व्यक्ति को, एक समुद्र में डूबते व्यक्ति को एक नाव बचाने की गारंटी नहीं दे सकता, उसी प्रकार से वो सब व्यक्ति जो भगवान के द्वारा उपेक्षित हैं, अपनी प्लानिंग करके कभी अपने को नहीं बचा सकते। तो हम अपनी प्लानिंग तो बहुत करते हैं, ये पूरा समाज में, आज के समाज में हम क्या अपने अपनी प्लानिंग कर रहे हैं, लेकिन अगर हम भगवान के द्वारा उपेक्षित हैं तो हम जितने भी प्रयास कर लें, हम अपने दुखों का, हम अपने कष्ट में स्थिति का निवारण अपने आप पूरी तरह से नहीं कर सकते हैं। अगर सैंक्शन नहीं तो नहीं कर सकते हैं। हम नहरें खुदवा सकते हैं लेकिन जब पानी होगा तभी तो नहर में पानी आएगा। तो ये हमें समझना है कि जो कष्टों का कारण है वो मात्र बाई चांस नहीं है, और ना ही हम उसके नियंत्रण करता है किसी भी प्रकार से, बल्कि हम खुद उन नियमों में फंसे हुए हैं। हम खुद अपनी रक्षा नहीं कर सकते हैं, तो हम क्या दूसरे की रक्षा करेंगे? इसलिए अगर हम ये जो समाज सेवा का हम बात करते हैं वो इस अज्ञानता के आधार पर करते हैं कि हम सोचते हैं हम किसी की मदद कर सकते हैं। वास्तव में हम किसी की भौतिक स्थिति को इस प्रकार से नहीं सुधार सकते, इस प्रकार से नहीं सुधार सकते। इतने सारे समाज सेवी संस्थाओं पर होने पर भी आज भी एक वर्ग है जो गरीब है, आज भी एक वर्ग है जो बीमार है। क्या हम सबको एक कर पाए, सब अमीर हो जाए? नहीं, पॉसिबल नहीं है, हमेशा समाज में ऐसे वर्ग रहेंगे। अगर हम समाज की कोई सेवा कर सकते हैं, किसी व्यक्ति की कोई सेवा कर सकते हैं, तो वो केवल एक प्रकार से कर सकते हैं कि हम उसे उसका भाग्य बदलना सिखाएं। मैन इज द मेकर ऑफ हिज डेस्टिनी। हम भाग्य को कृत्रिम तरीके से नहीं बदल सकते हैं, लेकिन हम उसको विधि बता सकते हैं जैसे वो अपना भाग्य बदल सके। तो कैसे वो भाग्य बदल सकता है अपना? जिस किसी भी भौतिक स्थिति में वो है, उसके कर्मों के द्वारा वो निश्चित हुई है, उस स्थिति में रहते हुए जो भी उसको इस समय स्थिति है उसको वो टॉलरेट करना सीखे, सहन करना सीखे। और हा? अभी इस कर्म फल के चक्र से निकलने के लिए प्रयास करें, इस कर्म बंधन से निकलने का प्रयास करें। और वो कर्म बंधन से निकलने का प्रयास क्या है? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं भगवद गीता में, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षिष्यामि मा शुच। यदि आप मेरी शरण में आते हैं तो आप सभी पापों से मैं आपको मुक्त करा सकता हूं, क्योंकि मेरी शरण में आना अर्थात जीव अपनी स्वाभाविक स्थिति में जा रहा है। अभी जो पेशेंट है, अभी जो कैदी है, वो जेल में है लेकिन अभी वो स्वीकार कर रहा है, समझ रहा है अभी मैं गलती नहीं करूंगा, अभी मैं समझ रहा हूं कि मैं नागरिक हूं, मुझे सरकार की सेवा करनी चाहिए, मुझे नियमों को नहीं तोड़ना चाहिए। नाउ आई एम रेडी। ओके, देन यू कम आउट, यू आर रेडी नाउ। तो उसी प्रकार से जब जीव भगवान की शरणागत होता है, ईश्वर के सेपरेटली अपनी आइडेंटिटी नहीं रखना चाहता है, भगवान की सेवक बनना चाहता है, तब भगवान सभी प्रकार के जितने भी हमारे दुष्कर्म हैं उनके फलों से हमको मुक्ति दिलाते हैं। इसीलिए यदि वास्तव में हम किसी की सेवा करना चाहते हैं और अपनी सेवा करना चाहते हैं फर्स्ट, तो हमें खुद भगवान की शरणागति लेनी चाहिए और दूसरों को वो शरणागति लेने के लिए प्रेरित करना चाहिए। ये केवल एकमात्र वो तरीका है जिससे आप किसी की कुछ मदद कर सकते हैं, अन्यथा भौतिक प्लेटफॉर्म पर रहकर, शरीर के स्तर पर रहकर हम कुछ नहीं कर सकते। और जहां तक भौतिक स्थिति का प्रश्न है, जहां तक शरीर की आवश्यकताओं का प्रश्न है, तो वो तो सबके लिए भगवान ने ऑलरेडी अरेंज किया ही है। किसी को थोड़ा कष्ट से मिलता है, किसी को थोड़ा सुख से मिलता है, लेकिन मिलता सबको है, सब जानवरों को ही मिलता है। वहां पर कोई समाज सेवी संस्थाएं हैं जानवरों में? नहीं, वो प्रकृति के नियम के द्वारा सबको इस शरीर को मेंटेन करने के लिए आवश्यकताएं दी गई हैं, हमें थोड़ा सा प्रयास करना पड़ता है उसको लेने के लिए। तो उसी प्रकार से अगर हम भगवान की व्यवस्था को देखें, जैसा हम पूरा इस सेमिनार में भी चर्चा किए कि वर्णाश्रम धर्म व्यवस्था के अंतर्गत तो स्वाभाविक रूप से जो दर्दी है उनका इलाज होगा, और गरीबी का प्रश्न ही क्या है, हर व्यक्ति को खाने को मिलेगा। हाँ, हर व्यक्ति का स्टैंडर्ड एक सा नहीं होता, वो दूसरी बात है, वो ठीक है, कुछ को थोड़ा ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, किसी को थोड़ी कम मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन सबको खाने को मिलेगा। और जब खाने का जो स्वाद है अंततः वो तो एक ही होने वाला है, जैसे आज बता बोल रहे थे, आप सोने की थाली में खाएं कि लोहे की थाली में खाएं, खाने का स्वाद तो वही रहने वाला है। तो एक्चुअली वास्तव में इन भौतिक स्थितियों में सुख दुख का प्रश्न केवल मन के अंदर है, वो शरीर के अनुसार आपको एक प्रकार का सुख है, मिलना है वो मिलेगा आपको, उससे ज्यादा भी नहीं, उससे कम भी नहीं। इसलिए कहा गया तस्तेव हेत प्रयतेत कोविदा यम न लभ्यते भ्रमतम उप्रियता। आप उस चीज के लिए प्रयासरत कीजिए जो ब्रह्म योनि से लेकर के निम्नतम पाताल योनि तक में कहीं पर भी उपलब्ध नहीं है। जहां तक भौतिक सुखों का प्रश्न है तो भौतिक सुख आपको उसी प्रकार से मिलेंगे आपके भाग्य के अनुसार जिस प्रकार से भौतिक दुख आपको भाग्य के अनुसार मिलते हैं, बिना उसके लिए प्रयास किए, बिना उसके लिए कामना किए। इसलिए डोंट बी एंग्शियस अबाउट दैट, उसके लिए चिंता मत करो। वर्णाश्रम के अनुसार, अपने भगवान के निर्देश के अनुसार कार्य करो, ऐसा नहीं कि हम कार्य करने के लिए मना कर रहे हैं। नहीं सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मृगे मिखा, एक सोए हुए शेर के मुंह में भी अपने आप से मृग नहीं जाता है। सो वी हैव टू डू समथिंग, उसकी मनाही नहीं है, लेकिन ये मत समझो कि मेरे प्रयास से ही सब कुछ हो रहा है। आप उतना प्रयास करो जितना आपके शरीर के देखभाल के लिए जरूरी है, और आपके कर्म के अनुसार उसमें कुछ प्रकार का मेहनत इन्वॉल्व है, उतनी मेहनत करो, दैट्स इट, उतनी मेहनत करो जितनी से आपकी आवश्यकताएं पूरी होती हैं। तो फिर समाज की जो व्यवस्था है उसके अंतर्गत अपने आप ये समाज सेवा तो उसके अंदर ऑटोमेटिक है, उसकी जरूरत नहीं है अलग से समाज सेवी संस्थाएं बनाने की। राजा का कर्तव्य है कि यदि कहीं पर अकाल पड़ा है, कुछ हुआ है, तो वो अपने रिजर्व रखे और वहां पर अनाज को लाए। लेकिन आजकल के जो राजा हैं, गवर्नमेंट है, वो खुद तो टैक्स लेते हैं लेकिन उस टैक्स को हड़प जाते हैं और फिर बोलते हैं आप एनजीओ बनाओ, वेरी गुड, यू आर डूइंग गुड वर्क, आप ये सब समाज सेवा काम करो, आप क्या कर रहे हो फिर, आप क्यों टैक्स ले रहे हो सब, आपको किस लिए फिर टैक्स ले रहे हैं आप? टैक्स का कार्य है सामूहिक कार्य के लिए टैक्स ले रहे हैं। तो अगर राजा सही से अपना कार्य करेगा, हर व्यक्ति अपने अपने इस पूरे समाज में अपना कार्य करेगा, तो जो हम समाज सेवा की बात कर रहे हैं वो तो ऑटोमेटिक अपने आप हो जाएगी, उसके लिए अलग से प्रयास की जरूरत नहीं है। तो इस प्रकार से हमें समझना चाहिए कि वास्तविक समाज सेवा है भगवत भक्ति का प्रचार, भगवत गीता का प्रचार। अगर समाज में सुख शांति स्थापित करनी है इंडिविजुअल लेवल पर, पारिवारिक लेवल पर, सामाजिक लेवल पर, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर, यदि भगवदगीता की टीचिंग्स को, यानी कि इस कंसेप्शन, इस अंडरस्टैंडिंग को कि ईशावास्यम इदम सर्वम यत किंचित जगत्याम जगत तेन तक तेन भुंजिदा मां हृदय कस्य धनम, ये सब पूरी जितने भी एग्जिस्ट है ये सब भगवान की संपत्ति है, एवरीथिंग बिलोंग्स टू कृष्ण, ये सब भगवान की संपत्ति है और हम केवल उतना उपभोग करें जितना हमारे शरीर के लिए आवश्यक है, समझते हुए कि दूसरी किसी और की संपत्ति है। यदि हम आवश्यकता अधिक ले रहे हैं अर्थात हम किसी दूसरे के मुंह का टुकड़ा छीन रहे हैं, दैट मीन्स दैट। और इस प्रकार से हम अपने जीवन का केंद्र भगवान को रखें, हर कार्य भगवान की संतुष्टि के लिए करें, भगवत भक्त बने और इस प्रकार से पूरे समाज के अंदर सुख शांति स्थापित हो। और ये शरीर त्यागने के बाद, शरीर त्यागने के समय भगवान का चिंतन करते हुए हम निर्धारित करें, गारंटीड प्रोसेस, कि हम दोबारा इस भौतिक जगत में जन्म न लें बल्कि भगवत धाम, भगवान के धाम में वास करें। तो इस प्रकार से सबसे बड़ी सेवा ये है, इस ज्ञान का सिस्टमेटिकली प्रचार होना चाहिए। इसलिए प्रभुपाद जी ने जो संस्था स्थापित की है, भगवत गीता और भागवतम की शिक्षाओं का सिस्टमेटिक प्रचार समाज में किया जाए, इस उद्देश्य से ये संस्था स्थापना की गई। इसलिए हम सब भक्तों को भी चाहिए कि हम विशेष रूप से जो प्रचारक हैं उनको तो बहुत गहराई से इसका अध्ययन करने की आवश्यकता है और सभी को आधारभूत सिद्धांत तो जानने की आवश्यकता है ही कि हम सब भगवान के दास हैं और भगवान की सेवा करनी है। और जानने के बाद जन जन हर जगह जाकर के हम इन शिक्षाओं का प्रचार करें तो फिर हम देखेंगे कि वास्तव में हम लोगों की सेवा कर रहे हैं, अपने परिवारजनों की सेवा कर रहे हैं, समाज की सेवा कर रहे हैं। हरे कृष्ण। इस विषय में किसी का कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। पढ़ अच्छा, और भी कोई प्रश्न है तो भी पूछ सकते हैं।
जैसे कुछ लोग हैं जो कृष्ण स्तुति और जो देवी देवता है उनकी पूजा करते हैं, मतलब उनके पुण्य भक्ति में उनकी कर रहे हैं लेकिन उनकी भक्ति कर रहे हैं।
इंटरेस्टिंग क्वेश्चन कि बहुत से लोग ठीक है कृष्ण की भक्ति नहीं कर रहे हैं पर अन्य देवताओं की भक्ति कर रहे हैं, तो वो इनमें से कौन से स्तर पे आएंगे? तो भगवान कहते हैं कामई सही सृत ज्ञान प्रपद्यन्ते अन्य देवता, जिन लोगों की बुद्धि काम वासनाओं से मारी गई है वो अन्य देवताओं की शरण में जाते हैं। तो आप अभी एनालाइज कीजिए, जो देवताओं की पूजा करते हैं या भक्ति करते हैं उनका उद्देश्य क्या है? कुछ भौतिक फल पाने के लिए वो करते हैं, करेक्ट। उनका उद्देश्य है परम सत्य को समझना नहीं है, उनका उद्देश्य है इस भौतिक जगत में सुखी रहना है। और भी एडवांस है इस भौतिक जगत में, हम इस समय सुखी रहेंगे और भी आगे जाएंगे तो उन देवताओं के धाम में जाएंगे, स्वर्ग लोक को प्राप्त करेंगे, मैक्सिमम यहां तक। इसलिए वो लोग वो योग की सीढ़ी में नहीं है, वो लोग उस योग की सीढ़ी से भी एक स्टेप नीचे हैं जिसे कहते हैं कर्मकांड। कर्मकांड, कर्मकांड अर्थात देवी देवताओं को शास्त्र के अनुसार जो संबोधित अनुमोदित जो विधियां हैं उनके माध्यम से अलग अलग देवी देवताओं को प्रसन्न करने का प्रयास जिससे हम कुछ भौतिक सुख प्राप्त कर सकें। उसको छोड़िए, लिसन हियर, तो वो कर्मकांड है जिसके माध्यम से इस भौतिक जगत में सुखी रहने का प्रयास, वास्तव में भक्ति नहीं है। भक्ति केवल भगवान के प्रति ही होती है, क्योंकि भक्ति का डेफिनेशन है अन्याभिलाषता शून्यम ज्ञान कर्माणि अनावृतम आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तम। भक्ति का मतलब है किसी स्वार्थ के लिए किसी भौतिक चीज को प्राप्त करने नहीं, मात्र भगवान को संतुष्ट करने के लिए उनकी सेवा करना, ना कि रिटर्न में कुछ प्राप्त करने के लिए सेवा करना, दैट इज बिजनेस। तो इसलिए वास्तव में जो भक्ति है वो संबंध केवल भगवान के साथ स्थापित हो सकता है, क्योंकि वो हमारी स्वाभाविक स्थिति है। देवी देवताओं के साथ हमारा वो संबंध नहीं है, इसलिए वहां पर वो संबंध स्थापित नहीं हो सकता। लेकिन जो देवताओं की पूजा कर रहे हैं उनकी स्थिति, जो नास्तिक हैं और जो केवल इंद्रिय भोग कर रहे हैं विम्सिकली बिना शास्त्र के निर्देशों का कुछ भी पालन किए, उनसे अच्छी है। क्योंकि चांस है कि वो लोग धीरे समझेंगे कि देवता हैं और फिर कभी कभी सुनेंगे और समझेंगे, अच्छा तो ये स्वर्ग लोग जाता हूं लेकिन वहां वापस आना पड़ता है तो भी क्या, इससे ऊपर क्या है, इन देवताओं के ऊपर कौन है, तो संभावना है कि वो धीरे धीरे भक्त बनेंगे, इसलिए इज बेटर। बट वी शुड अंडरस्टैंड कि वास्तव में भक्ति जो हमको मुक्ति प्रदाता सर्वेशां विष्णु एव न संशय, मुक्ति प्रदाता केवल एकमात्र विष्णु ही। बोलिए
बोलिए।
उसको पहुंचना है वहां, अगर नहीं पहुंचा तो वो परफेक्शन में नहीं पहुंचा,
एक ही मेथड हो
गया। लेकिन अगर लिफ्ट अवेलेबल है तो क्यों स्लो प्रोसेस से जाएं? और उसमें क्या है कि ग्रेजुअल में कोई गारंटी नहीं है कि आप अपने आप एक के बाद पहुंच के अपने आप वहां पहुंच ही जाएंगे। आप किसी एक स्तर पर रहकर रुक भी सकते हैं बहुत समय तक, वो स्वाभाविक ऑटोमेटिक ऐसा नहीं कि कोई भक्त बन जाएगा। भक्त बनने के लिए तो उसको भक्तों का संग और ये जानकारी, ये इच्छा, रेडीनेस, यस आई वॉन्ट टू सरेंडर नाउ टू वन पर्सन कृष्ण सुप्रीम पर्सन, वो आनी पड़ेगी। निराकार में लीन होने पर भी अपने आप से ये बुद्धि में नहीं आएगा कि कृष्ण भगवान है, अपने आप ऑटोमेटिक रिलेशन नहीं होगा, क्योंकि वो चाहते ही नहीं है, वो चाहते ही नहीं है किसी व्यक्ति की शरण में आना। तो इसलिए कहा गया है शास्त्रों में, आरुह्य कृष्ण परम पदम पतंत्यदः अनादित यशमात अंग्रय। जो व्यक्ति निराकार ब्रह्म में लीन होता है अनेक अनेक समय तक वहां रहने पर भी पुनः इस पृथ्वी लोक में जन्म लेता है, तो इसलिए ऑटोमेटिक नहीं होगा। लेकिन तात्पर्य यह है कि यह ग्रेडेशन है कि जब तक वो वहां नहीं पहुंचे तब तक वो इम्परफेक्ट स्टेट है बाकी सब।
अगेन
वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो हमने कहा कि तीसरे स्तर पे आता है कि अपने कार्य करो आप और कार्य के फलों को भगवान को अर्पित करो। तो क्या इसका मतलब ये है कि हम विम्सिकली कुछ भी कार्य करें और इसके फलों का भगवान को दें? जैसे डायरेक्टली बोलें तो शराब का ठेका खोलें और शराब के ठेके का जो पूंजी है अर्जित उसको भगवान की सेवा लगाएं, तो क्या सही है या गलत है? तो अगर कोई व्यक्ति का शराब का ठेका है और अभी वो भक्तों के संपर्क में आता है और सुनता है और समझता है कि वास्तव में वो जो कार्य कर रहा है वो भगवान की आदेश के अनुसार नहीं है, ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन इमीडिएटली अपनी स्थिति को बदलने के लिए भी वो अक्षम है। क्योंकि हम जानते हैं कि कोई बिजनेस में है तो ऐसा नहीं कि ओवरनाइट इमीडिएटली बिजनेस का बदल सकते हैं, आपका परिवार पालन आपको पालने के लिए तो इमीडिएटली आप नहीं बदल सकते हैं। तो इसीलिए उसके लिए पहला स्टेप होगा, ओके कम से कम अभी जो भी इससे आ रहा है आई विल यूज इट फॉर कृष्ण। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि मैं समझ लूं कि मैं यही करता रहूंगा यही पूर्णता है, ये पूर्णता नहीं है, लेकिन ये मेरे लिए पहला स्टेप है, ऐसा करूंगा और भगवान से प्रार्थना करूंगा कि धीरे मेरे को ऐसी स्थिति प्रदान करें कि मैं इसकी जगह आपके आदेश के अनुसार कार्य करने के लिए रास्ता मेरा खोलें, और जब वो उसको मौका मिले तब वो उसको शिफ्ट करे, चेंज करे। तो ये टेम्परेली इट कैन बी, इट इज एक्सेप्टेड बिकॉज वी हैव टू स्टार्ट समवेयर, कहीं ना कहीं शुरुआत करनी है, सो इट कैन बी ए स्टार्ट। लेकिन अगर हम धोखा देने की कोशिश करें, भाई भगवान को तो अर्पित कर रहा हूं तो फिर क्या और क्या रहेगा, दैट्स ऑल राइट, देन दैट मेंटेलिटी इज रॉन्ग। हमें कार्य भी वही करना चाहिए जो भगवान चाहते हैं। यस डिफाइन, एक्चुअली पूरा सेमिनार उस पर था, वर्णाश्रम धर्म के अंतर्गत सबके अलग अलग ड्यूटीज क्या है, उसके अंदर ऑटोमेटिकली प्रकृति के जो मेंटेन करना है वो उसके अंदर ऑटोमेटिक रह आता है, क्योंकि शास्त्र के अनुसार जो भी कर रहे हैं उसमें पूरी अंडरस्टैंडिंग ही है कि प्रकृति हमारी माँ है, वो शोषण करने के लिए नहीं है, इट इज टू बी सर्व्ड, सो देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ एक्सप्लॉइटिंग. Yes, bro. He has a question. Okay, maybe after that.
हरे कृष्ण.
रामायण तो आप सच्चा मानते हो?
यस, वो शास्त्र है.
तो उसमें जैसे सीता जी की जो शादी होने वाली होती है.
किनकी? सीता.
राम सीता जी की जो शादी होने वाली होती है.
हाँ जी.
तो सीता जी को राम जी बहुत पसंद होते हैं. तो उस समय वो जो गौरी पूजन करने जाती है तो उसके मन में यही चाहत होती है कि वो राम जी को पाए. तो उनका गौरी पूजन करने जाना गलत है या सही?
तो ऐसा ही प्रसंग कृष्ण लीला में भी आता है कि जो गोपियां हैं वो भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त करने के लिए कात्यायनी कात्यायन जी के पास जाती हैं. हाँ, रुक्मणी जी. हाँ, ओके. तभी ये बहुत अच्छा, अगेन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन भक्तों के लिए. हाँ, कि हम लोग ठीक है देवताओं के पास जा रहे हैं उनसे और उनसे मांग रहे हैं भगवान को, तो इसमें क्या गलती है? तो सैद्धांतिक रूप से यदि हमारा एकमात्र उद्देश्य भगवान की शुद्ध भक्ति प्राप्त करना है, तो यदि हमें कहीं किसी से भी उसमें मदद मिल सकती है उसको हम ले सकते हैं. अगर हम स्पष्ट हैं कि हमें चाहिए क्या, तो हमें कहीं से किससे मदद मिल सकती है तो भी ले सकते हैं. जैसे एक बार प्रभुपाद भक्तों को बोले, संकीर्तन डिवोटीज को, तो संकीर्तन डिवोटीज बोले कि प्रभुपाद जी, हम आपकी बुक्स डिस्ट्रीब्यूट करने जाते हैं और लक्ष्मी एकत्र करते हैं उसके माध्यम से, तो हम गणेश जी को पूछते हैं, प्रार्थना करते हैं गणेश जी से कि गणेश जी हमारे कार्य में ये विघ्न आए और अच्छे से हम लोग अपना भगवान की सेवा कार्य अच्छे से कर सकें. तो प्रभुपाद बोले, यस यू कैन डू इट. अगर हेतु आपका भगवान की सेवा प्राप्त करना है और आपको लगता, आपको पता है कि यहाँ से मुझे कोई मदद मिल रही है, जैसे कोई व्यक्ति है उसके पास पैसा है और हमें भगवान की सेवा के लिए पैसा लगाना है, वो लक्ष्मी भक्त भगवान की सेवा के लिए लगनी है, तो हम जाके प्लीज गिव मी दिस मनी टू सर्व कृष्ण, तो हम उससे मदद ले सकते हैं. लेकिन सावधानी रखनी पड़ेगी. क्या सावधानी? कि हमें रुक्मणी की तरह और सीता की तरह और गोपियों की तरह बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि मुझे कृष्ण कृष्ण केवल कृष्ण शुद्ध भक्ति और उसके अलावा कुछ नहीं चाहिए. सामान्यतः क्या होता है कि जब हम अच्छे हेतु से भी देवताओं की पूजा करते हैं, तो हमें जब हम पूजा करेंगे तो हमारा संघ किन लोगों के साथ होगा? देवताओं की पूजा करेंगे तो जो देवी देवताओं के उपासक हैं उनका संघ होगा. वहां मंदिर में जाएंगे तो उनके वहां पर भक्त उपस्थित होंगे. और उस प्रकार की जो प्रणाली है देवताओं की पूजा करने की, जिसमें प्रार्थनाएं हैं, धनम जय ही जनम जय ही, ये सब प्रार्थनाएं हैं, अलग अलग विधियां हैं जो पूरी तरह से इस भावना से ओतप्रोत हैं कि तो आप देखिए तो विधि जो प्रचलित है समाज के अंदर और जो लोग उसको कर रहे हैं, तो उन लोगों का संग करना होगा और ऐसी विधियों में से गुजरना होगा जिससे अगर आप रुक्मणी जैसे स्ट्रांगली डिटर्मिंड नहीं है कि मुझे केवल कृष्ण चाहिए, तो बहुत बहुत संभावना है कि कहीं ना कहीं धीरे धीरे आपके मन के अंदर आ जाएगा कि ये देवी देवता मुझे कुछ ऐसी चीज दे सकते हैं जो शायद कृष्ण भी ना दे सकें, शायद इनकी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है. ठीक है, मुझे भगवान से भक्ति मांगता हूं, लेकिन ये मेरा जॉब नहीं लग रहा है, ये शरीर में कुछ कष्ट है, शायद इसके लिए मुझे इनसे मांग लूं, भगवान शायद ये नहीं दे पाए डायरेक्टली मैं इनसे, ये ज्यादा अच्छा तरीका है. तो ये जो इंडिपेंडेंस मूड आ जाएगा इसकी बहुत संभावनाएं हैं. इसीलिए सेफ प्रोसेस क्या है, सेफ तरीका क्या है, कि यदि हमें भगवान की भक्ति ही चाहिए तो भगवान की भक्ति को सबसे अच्छे तरीके से आसान तरीके से कौन दे सकता है? जिसे भगवान यहां भेज रहे हैं अपनी भक्ति शुद्ध भक्ति देने के लिए, यानी भगवान का शुद्ध प्रतिनिधि, भगवान का शुद्ध भक्त, गुरु, भगवान का प्रतिनिधि, जिसके अंदर सभी देवताओं का वास है, सर्वदेवमय गुरु, सभी देवताओं का वास है. तो अगर हम कहें कि कई बार हम कहते हैं ठीक है हम तो उनको हम इस देवता की पूजा कर रहे हैं भगवान को प्राप्त करने के लिए कर रहे हैं और हम तो उनको इसलिए इस तरह से पूजा कर रहे हैं कि वो भगवान के प्रतिनिधि हैं भगवान के एक सेवक हैं। तो फिर प्रश्न ये उठता है कि वो वही एक ही देवता की पूजा ही क्यों कर रहे हैं, वो 33 करोड़ देवता हैं तो उनके पास क्यों नहीं, उन सभी तो भगवान के सेवक हैं सभी क्यों सेवा नहीं कर रहे। तो अगर हम अपने हृदय में झांक के देखें तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर है कि हम पहले से करते आए हैं, पता नहीं कहीं बुरा ना मान जाएं, पता नहीं हमें कुछ इसकी वजह से कुछ दिक्कत ना आ जाए, तो चलो अच्छा है साथ साथ में करते हैं। कहीं ना कहीं आप अगर अपने हृदय में झांक के देखेंगे तो शायद ये अटैचमेंट है जिसकी वजह से हम उसको कहना चाह रहे हैं कि भाई ठीक है हम तो उनके पास इसलिए आ रहे हैं कि भक्ति दो। लेकिन आप देखिए वास्तव में उनका फंक्शन क्या है, देवताओं का कार्य क्या है, देवी है उनका कार्य क्या है, तो उनका कार्य है इस भौतिक जगत का संचालन, ये उनका मुख्य कार्य है। तो हम क्यों ना अगर कोई चीज मांग रहे हैं तो उनसे मांगे जो उनका कार्य है। और अगर आप और गहराई में जाएंगे चैतन्य चेतामृत में तो ये जो गोपियां जो कात्यायनी के पास गईं वास्तव में वो अंतरंग शक्ति राधा रानी की एक्सपेंशन उनके पास में गई। वास्तव में बाह्य रूप से वो जो कात्यायनी जो वो डेटीज हैं एक्चुअली दे आर नॉट वो दुर्गा जी की रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, दे आर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंटरनल पोटेंशियल अंतरंग शक्ति की अभिव्यक्ता है, ये चैतन्य चेतावनी में लिखा गया है। तो इसलिए जब हम महान भक्तों की बात करते हैं तो थोड़ा हमें देखना पड़ेगा कि आचार और उनकी इंस्ट्रक्शंस क्या हैं। इमिटेशन तो नहीं कर सकते हैं लेकिन एक सरल प्रोसेस है, अगर हमारी श्रद्धा है हम समझ रहे हैं कि श्रील प्रभुपाद भगवान के शुद्ध भक्त हैं, आचार्य गण जो आए हैं वो शुद्ध भक्त हैं, यदि हम उनके चरण पकड़ लें तो पक्का है भगवान के पास पहुंचना, क्या इतना विश्वास है कि अगर भगवान प्रभुपाद जो हैं जो गुरु जो परंपरा आ रही है ये व्यासदेव और ये सब जो आचार्य गण हैं चैतन्य महाप्रभु ये सब जो हैं शुद्ध भक्त हैं और यदि हम ये सक्षम है हमें भगवान तक पहुंचाना, यदि इतनी श्रद्धा है तो फिर अन्य सब चिंताओं को छोड़कर क्यों ना केवल उनके चरण पकड़ें जैसा वो कह रहे हैं वैसा करें, बस सब चिंताएं ये कर सकते हैं कि वो कर सकते हैं उस सब की जगह बस वही करना है जो वो कह रहे हैं, दैट्स इट फिनिश। तो कम से कम उसमें तो श्योरिटी है। तो यस देवताओं की पूजा कर सकते हैं आप इस भावना में लेकिन रिस्क है, देयर इज रिस्क।
जैसे आप ले गए मुझे शादी में हमने कोई विवाह का प्लान नहीं किया और जैसे जो जगन्नाथ कार्यक्रम और अपनी जो बड़े गुरु बनने लगे तो इस साल देव आप इस साल देव भयो गुरु बोलिए उसी भाव को बताया गया दारू बोला आचार्य मां मिला नहीं यार उसके आगे आचार्य मां मिला नहीं यार जहां उनको करे से बीच जितना विश्वास बढ़ाएंगे जितना नीचे छोड़ जाएंगे उसमें जल्दी हम चिंताएं आसक्तियां भय खत्म हो जाएगा। जीवन जिस प्रकार पहले चल रहा था उससे स्मूथ चल रहा है, जब हम अपने जीवन को स्मूथ चलने की प्रार्थना नहीं करते हमें कहते जैसे आप बताओ मार बिना कर दे जो इच्छा तो हार नित्य राष्ट्रति तो प्रणाम आती है तो प्रार्थना भगवान प्रणाम दूर करेंगे जैसे जैसे की आस्था करोगी बेबी भी चलती चलती हेल्थ अच्छी है वेल्थ अच्छी है बिल्कुल अच्छा है समाज समान अच्छा है तो बात आने की नहीं आ रही प्रमाण होगा कैसे जैसे कृष्ण
हरे कृष्ण। अगर कोई भूखा व्यक्ति हमारे पास किसी आश्रम से आता है भोजन के लिए हम उसको भोजन ना देके उसको भाग्य बदलने के लिए उसको उपदेश देते हैं क्या वो हमारी बात सुनेगा या खाली पेट भूखे पेट को भजन कर सकता है?
अगर कोई आदमी भूखा है तो हम उसे कृष्ण प्रसाद दें, हम उसे कृष्ण प्रसाद दें, और कृष्ण प्रसाद केवल भूखे आदमी को नहीं हर व्यक्ति को दें, क्योंकि हर व्यक्ति उसका भूखा है, हर व्यक्ति को कृष्ण प्रसाद की जरूरत है। अभी कोई भूखा व्यक्ति है तो आप देखिए, भूखा व्यक्ति आ रहा है खाने के लिए और घर में टीवी चल रहा है, यथार्थ क्या आप जाके देखिए, झोपड़ियों में आप जाके देखिए कौन ऐसा व्यक्ति है जो बिना खाए मर रहा है, वो खाना खाएगा और जो जो भी बचाए उसके दारू खरीद के पिएगा, ये रियलिटी है। हम अपने मिसमैनेजमेंट से गरीबी ला रहे हैं, फिर भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो बिना खाए मर रहा है एक्चुअली। तो इसलिए हम इस प्रकार से खाना दे करके मात्र उसकी जो वृत्ति है निठल्लापन की, उसको बढ़ावा दे रहे हैं। अगर हम उसे कृष्ण प्रसाद देते हैं तो उसका शुद्धि हो रहा है, और साथ साथ उसको हरे कृष्ण मंत्र भी कहें, करने को बोलें और प्रचार करें जितने जिस स्तर पर वो ले पाए उसको, लेकिन मात्र खाना देने से उसका भला नहीं हो रहा है। ये देखिए, या तो वो जब खाना मिल रहा है तो ठीक है मौज करो, फिर तो जाओ सिनेमा जाओ, ये देखो एंजॉय करो, शराब पियो। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बॉम्बे में अंदर ये कहाँ पर सो कॉल्ड गरीबों को मकान बना के दिए, लो इनकम क्लास ग्रुप के मकान बना के दिए। बाद में 2 साल बाद 3 साल बाद सर्वे किया कि भाई क्या हुआ, तो पता लगा वो सब मकान वो जो लोगों ने किराए पे दूसरों को दे दिया, खुद वहीं रह रहे हैं झोपड़ी में उससे इनकम आ रही है, उस पैसे दारू पी रहे हैं। सो जब तक तो केवल उससे समाधान नहीं हो रहा है, ये समझना पड़ेगा।
हेलो, हरे कृष्णा।
हरे
कृष्णा। तो कोई किसी की मदद नहीं करेगा, समाज को बुराई की तरफ जा सकता है। अगर हमें कैसे पता चले कि सर आप भी क्या मदद कर रहे हैं, ये इसके लायक है या नहीं?
तो समाज की मदद हम कैसे कर सकते हैं, उस प्रकार समझ करके वैसे समाज की मदद कीजिए, समाज की मदद ना करने का प्रश्न नहीं है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि भगवान के कार्य में विघ्न डाल रहे हैं, ये कोई प्रश्न भगवान के कार्य में विघ्न डाल रहे नहीं है, वो अपने कर्म के अनुसार उसको भुगत रहे हैं। इसीलिए ठीक है, आप खाना देते हैं, आप पूरे संसार में जितने भी लोग हैं, मैंने पहले बताया कोई भूखा नहीं मर रहा है, लेकिन आपको लग रहा है कि मैं ये जो भी मेरी स्थिति के अनुसार खाना नहीं मिल रहा है, मेरे से नीचे है उसको मैं खा दूंगा, तो कितना पैसा है आपके पास? नहीं, मैं एक प्रश्न कर रहा हूं जिसका सिद्धांत है अंदर, कि हमारी शक्ति क्या है इस पूरे जगत में, सब लोग अपना मन बहला सकते हैं, भाई हजार है मैंने एक दुखी को किया, लेकिन क्या शक्ति है? समझिए कि अगर आज किसी आदमी को खाना नहीं मिल रहा है, उसका कारण सबसे बड़ा है हम जो अपने ये बिल्डिंग, ये जो पैसा खर्च करके जो हम शोषण कर रहे हैं, कारों बंगलों में घूम रहे हैं, ऐसी ऐसी स्थिति बना रहे हैं कि उनके मुंह का खाना हम छीन रहे हैं। पहले उनको हम गरीब बना रहे हैं और फिर उनको खाना खिला के बता रहे हैं देखो मैं तुम्हारा धर्मात्मा हूं। वो क्यों गरीब बनाए, क्यों उसको ऐसी नौबत आई उसको खाने को नहीं, और आपके पास लग्जरीज आइटम है, क्यों? क्योंकि आप जिस लग्जरी में जी रहे हैं वो उसी वजह से है, क्योंकि वो आदमी का छीना हुआ है। तो उसकी जगह वो जो व्यक्ति है जो आज गरीब है, यदि आप उसको वो काम करने लायक, उसको काम कराइए, उसको दीजिए काम, एंगेज कीजिए जिससे वो अपना अपना काम करने लायक बने, अपना कमाए। उसको खाली बैठे खिलाने से केवल वो आलसी बनेगा और बर्डन बनेगा, उससे क्या फायदा होगा? तो इसके लिए एक इंडिविजुअल प्रयास नहीं, पूरे समाज को मिलकर, सरकार सब नेताओं को मिलकर कार्य करना पड़ेगा। अनएम्प्लॉयमेंट क्यों भीख मांगने की जरूरत पड़ रही है? उसको काम पे लगाओ, उसको गिविंग वर्क, तो फिर भूख की आपको फिर देने की जरूरत नहीं है उसको, खाना अपना कमाएगा वो। यस, इंपॉर्टेंट, यस, आप बोलिए इसको, इट्स गुड पॉइंट।
संजय, आपने ओपन स्कॉर्पियो मुंबई का जो ओपन चैलेंज है, सूरत सूरत शहर के जितने भिखारी जितने हजार हो लाख हो सबको स्कॉर्पियो दोनों चक्का चक्का मिलेगा, वो कीर्तन करें
उसका मतलब है दोनों चेहरे पर सत्य है याद है कोई भेदभाव नहीं, न जाति का, पैसे वाला है, पढ़ा लिखा है, गरीब कोई भी है, कभी भी आओ, हमेशा सेवा करने का हुआ है। अगर वो सुधरना चाहता है, सेवा करना चाहता है, दूसरे को बजाना चाहता है, हमेशा अपने स्वस्थ रहना चाहता है, छुटने से बल्कि इस कौन में जो जगह जगह अनाथ आश्रम में जाते हैं, जो कहते हैं बच्चे भी उनको भूमिचारी बना के आगे चलेंगे, बहुत अपना प्राण किया है जो बताया ना भिखारी की लौट की गरीब से पूछी, अब क्या करेंगे पैसे का, जब कार में भीख मांगने जाऊंगा तो उसकी भक्ति को प्रोत्साहन दे देंगे। आज अगर उस व्यक्ति को ये कहा जाए आप कई लोगों ने मेरे पास कई लोग मानना मैंने उनको ये कर दे किसने तब ने डिप्टी का ऑपरेशन करा दिया, ये करना होगा मैं कैसे बता देना आपने चलते पैसा भेज देता हूँ प्रति ये मौके साथ कुछ हो जाता है पैसे के लिए अपना पैसा बांध के बोली नहीं। तो ये एक प्रकार से हम जो स्वामी ने कहा ना अपने अहंकार किसी तरह को तो शोषण कर रहे हैं, उदाहरण कम से कम मोटे तौर पर देखें 10 से 10 लाख से ज्यादा लोगों को प्रसाद रूप करते हैं कुछ कम कथा हो गया तब कुछ होता नहीं बात तो कृष्ण प्रसाद को व्यवहार के लिए चयन करेंगे लेकिन वो सही तरीके से वो सहन लेना नहीं चाहते ना वो पत्रकार नहीं लेना चाहते हम उनका क्या हेल्प नहीं हो जाए उसको और मिला लेंगे उनका हेल्प नहीं तो क्यों होता रहता है बोला कि ठंडे बाद प्रसाद करो ठंडे हो गया जैसे
सृष्टि ओके सबसे पहले महाविष्णु भगवान के वो विस्तार हैं जो कारण समुद्र में शयन करते हैं और जिनके रोम छिद्रों से उनकी श्वास के साथ ब्रह्मांड उत्पन्न होते हैं अनगिनत ब्रह्मा और उनके श्वास लेने पर वो सब अनगिनत ब्रह्मांड उनके शरीर में वापस प्रवाहित होते हैं। हर एक ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बाद वो अपना दूसरा विस्तार करते हैं गर्भोदकशायी विष्णु के रूप में। हर ब्रह्मांड गर्भक समुद्र से भरा है जिसमें वो अनंत शेष के ऊपर विश्राम करते हैं और उनकी नाभि से कमल पुष्प निकलता है जिस कमल पुष्प पे ब्रह्मा जी विराजमान होते हैं उनकी उत्पत्ति होती है ब्रह्मलोक है वो। और फिर ब्रह्मा जी सेकेंडरी क्रिएशन करते हैं अलग अलग आत्माओं को शरीर प्रदान करते हैं और फिर भगवान ये विष्णु एक और बार अपना विस्तार करते हैं श्रोदकशायी विष्णु के रूप में जो हर व्यक्ति के हृदय में परमात्मा के रूप में विराजमान होते हैं। तो इस प्रकार से तीन विष्णु इस प्रकार से अच्छा यू आर ओके कोई आदमी जेल में क्यों जाता है? उसने गलत काम किया। जेल कौन बनाता है? सरकारी बनाती है जेल है ना, लेकिन कैदी जेल में आता है अपने वजह से, सरकार की वजह से नहीं आता। सरकार जबरदस्ती नहीं करती कि आप कैद में आओ, आप जेल में आओ, लेकिन अगर आप गलत काम करते हो तो आपको कैद में आना पड़ता है। उसी प्रकार से ये भौतिक जगत बनाया भगवान ने, लेकिन भगवान की इच्छा नहीं कि हम इसमें यहाँ आए, हम अपनी इच्छा से यहाँ आते हैं, भगवान की बात नहीं मानते हैं और चाहते हैं कि इस भौतिक जगत में रहें भोग करें, इसलिए हम यहाँ आते हैं अपनी इच्छा से आते हैं। भगवान नहीं चाहते हमें, भगवान तो इसलिए चाहते हैं कि हम वहीं रहें, हम भगवान की बात ना मान करके यहां आए। ठीक
हरे कृष्ण की जय,
हरे
कृष्ण चाहते चले गई बिना बजाय नाम आपको
ब्रह्मांड निकले फिर वो ब्रह्मांड कहाँ जाते हैं रहते रहते हैं फिर वो गर्भोदशाही विष्णु जी कहाँ से निकलते हैं
भगवान अपना विस्तार करते हैं महाविष्णु कारण समुद्र में थे वो अपना विस्तार करते हैं गर्भोदशाही विष्णु के रूप में जो हर ब्रह्मांड में प्रविष्ट होते हैं
हर ब्रह्मांड
और उस ब्रह्मांड में जो गर्भक समुद्र है उसके ऊपर अनंत शेष की शैया के ऊपर शयन करते हैं
शिरोदशाही वहाँ से
फिर दोबारा से जब फिर भगवान एक और बार विस्तार करते हैं शुक्राय शुक्र में जो कि हर शरीर में एंटर करते हैं हर परमाणु में एंटर करते
हैं तो जो सब के अंदर में शिरोदशाही विष्णु
यस परमात्मा जो है वो शुक्र है
कल सुबह काम अहमदाबाद
हाँ जी
हमारे बड़े भाई साहब भी विचार कार्य में लगे हुए हैं विदेश अमेरिका में
अच्छा
अहमदाबाद अपना गेस्ट हाउस है
यहाँ पर गेस्ट हाउस है
रमन रीति में फूड कोर्ट में रीति के पास में राधे कृष्ण भी मिला ना उसके साथ
अच्छा
आइए कभी
किस नाम से है वो
श्री श्री राधा श्याम
राधाश्यामी
नंदन जी जो है ना उनको माता है
ओके
उनको पूछ देना कि भाई उनके भाई मेरे गोविंद माधव दास मेरे भाई का नाम है गोविंद माधव दास
अच्छा अच्छा
स्वरूप दामोदर महाराज उनके
गुरु
ऐसे रहे नहीं जरूर आइएगा
अच्छा
अभी हम मतलब वेकेशन पे अभी जैसे 26 तारीख से लेकर 10 तारीख तक वहीं पे हैं
अच्छा वृंदावन राधेश्याम
हाँ देखो राधेश्याम आश्रम अलग है हमारा राधेश्याम पैलेस है
पैलेस
राधेश्याम आश्रम तो उधर है परिक्रमा मार्ग पे उधर वो जो है ना संत कॉलोनी उधर अपना इधर ही है दानुका देखा होगा बस दानुका वाले मैनेजर को बोला वो पहुँचा देगा दानुका मैनेजर है विजय कुमार
आपका नाम राधा गोविंद
नहीं मेरे भाई के साथ का नाम है गोविंद माधव दास
गोविंद माधव
मेरा नाम किशोर
किशोर
प्रजाकार में विदेश ही है
अच्छा
व्यवस्था बनी हुई है आइए
कौन संभालता है
हैं
कौन संभालता है
हमारे पिताजी रहते ही हैं और उसके अलावा मैनेजर और आदमी स्टाफ लोग रखे हुए हैं
फार्म 30 किलोमीटर दूर है भोपाल की तरफ नहीं है ओढ़व की तरफ
ओढ़व मतलब अहमदाबाद से तो मतलब जैसे कि इस्कॉन जैसे भोपाल की साइड उसका जैसे और एक विस्तार हो रहा था उधर भी हो रहा है
या भोपाल में है वहाँ पर सेटेलाइट
जो वहाँ पे है एस जी आई पे है वो तो जानना
होगा
पर जैसे ओढ़व दूसरा खुला है या
नहीं खुला नहीं लैंड जमीन
जमीन
फार्मिंग वो बहुत पहले से पहले इस्कॉन मंदिर वही था
ओके
उसके पास में ओढ़व के पास में
तो भी
सीखा
जैसे मिलवाना था
या हरे कृष्ण